عليكم. Hello and good morning. Subah khair, khush amdeed, and welcome back to the Dhansudar Tareen Show in Pakistan, jiska naam hota hai Samarize. Salmeen Ansari, mera naam, aur main aapki khidmat mein hazir janab, present boss. क्या हाल चाल है आप लोगों की? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, पुरसकून हैं, मुतमईन हैं. उम्मीद और दुआ तो हमेशा की तरह यही है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश भी होंगे. अगर खुशबाश ना सही तो कम अज़ कम खैरियत से होंगे, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमेशा मेरी नज़र में, कि सब खैरियत ही हो. आप लोगों से रब्ता तो रहा ही है पिछले एक हफ्ते में, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन जब दो तीन हफ्ते पहले जब इनिशियल लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त भी मैंने एक हफ्ता ऑफ लिया था चीज़ों को एनालाइज करते हुए. इवन दो हमारे, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि हमारे दफ्तर में बड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी इर्द गिर्द का जो माहौल हो उसमें सारे लोग कर रहे हों. सो यू नो, हर इंसान अपना अपना जायज़ा लेता है. कुछ लोग आ जाते हैं कंफर्टेबली, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं बिकॉज उनके घर में शायद बुजुर्ग होते हैं, या यू नो और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या उनको घबराहट ज़्यादा हो रही होती है, या वो एक डिफरेंट नज़रिए से चीज़ें देख रहे होते हैं. एनी हाउ, तो पहले भी यही हुआ था और अभी भी यही हुआ था कि कुछ ऐसे चीज़ें ऑब्जर्व मैंने की थी जिसकी वजह से आई थॉट वुड बी बेटर कि मैं और ज़्यादा एहतियात करूँ. लेकिन ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये कि खुशी मुझे इस बात की है कि उस वक्त भी मैं बता के गई थी कि अच्छा, मैं यू नो थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ इसी वजह से जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती हैं. और जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला था, मुझे इस बात की खुशी, ना सिर्फ इस बात की खुशी हुई थी कि आप लोग मोहब्बत कितनी करते हैं, लेकिन इस बात की और भी ज़्यादा खुशी हुई थी कि कितना ज़्यादा एहसास है आप लोगों को कि कितना ज़रूरी है कि अगर ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना. एहतियात करना, ऑब्वियसली एहतियात करते हुए बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों को निभानी पड़ रही हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ अवॉइड की जा सकती है या उसमें आपको यू नो पीछे हटने की ज़रूरत है, और मैं हट रही हूँ या आप हट रहे हैं, कोई और हट रहा है, और बाकी लोग उसको सराह रहे और सपोर्ट करें कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन वक्तों में किसी किस्म का भी रिस्क ना लिया जाए तो बेहतर है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी. लेकिन फिर वही कि नहीं, वापस जाना है, सारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसी कमी में मैं ज़िंदगी भर मेरे ख्याल में इसी कश्मकश में रहूँगी कि अपना तो ध्यान रखना ही है लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना है. लेकिन आप लोगों से रब्ता रहा, ट्विटर पर रहा, आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिस्पॉन्ड भी करते रहे. बहुत सारे लोग जो कि और भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक नई चीज़ का सिलसिला जो है वो भी मैंने शुरू किया है, जो कि आप लोग The other line of work that I do, उसका और जो मेरे बोलने का एक काम है, इन दोनों चीज़ों का एक मिलाप है. सो रब्ता रहा है, दैट्स द गुड थिंग. बट आप लोग कैसे रहे हैं? खैरियत से रहे हैं? कुछ ऐसा हुआ तो नहीं जो कि आप शेयर ज़रूर करना चाहेंगे? उतावले हैं? अच्छा, उम्मीद ही है कि अच्छा शेयर करना चाहेंगे. पिछले एक हफ्ते में कोई नई चीज़ सीखी की, कोई नया पैटर्न, कोई नया रूटीन? बिकॉज रमज़ान जब से शुरू हुआ था, कोइंसिडेंटली रमज़ान जब से शुरू हुआ था तब से मैं नहीं आई थी, तो इसमें कोई अगर नई रूटीन आपकी बनी है, कोई नई चीज़ आपको अडॉप्ट करनी पड़ी है, कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रमज़ान, या कोई बेहतरी आई है, वो भी ज़रूर बताइए. अगर खुदा ना ख्वास्ता आप ऐसे मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ पे कोई नहीं इतनी कोई अच्छी खबर आपको सुनने में आई है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. और अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. यानी आप जो भी शेयर करना चाहें पिछले एक हफ़्ते में, जो आपकी ज़िंदगी में मामूल बन गया था रमज़ान के शुरू होने के बाद, प्लीज़ डू लेट अस नो. लिखिए SFM, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए अपना, और 4471 पे भेज दीजिए. यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल सलमीन अंसारी. जाहिर सी बात है, रमज़ान है, एंड देन बिकॉज रिटर्न ऑफ द शो है, आई डोंट नो, एक्साइटमेंट था, या रमज़ान में शायद बाकी लोगों के साथ भी होता होगा कि नींद वींद का तो कोई सिलसिला होता नहीं है. तो मैं अभी लंबा इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था कि अब आपको मैं एक दो गाने सुनाऊंगी, उसके बाद मैं फिर वापस आऊंगी. तब तक आप अपने जवाबात या अपनी हेलो हाय जो भी आप भेजना चाहें भेजते रहिएगा. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बचपन का, बचपन से भी हमारे क्या, हमारे वालदेन के भी बचपन का शायद ये गाना है. इसके डिफरेंट वर्जन्स गाए गए. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वर्जन इज बाय अली सेठी नुमेरा अर्शद फ्रॉम कुक स्टूडियो. क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले समोसा किसने ईजाद किया? ये हेडलाइन पढ़ के मेरे मुंह पे मुस्कुराहट भी आई और मुंह में पानी भी आया. और मैंने सोचा कि हाँ, मैंने शायद ये पता नहीं सोचा है कि नहीं सोचा है, लेकिन ये कौन शख्स है जिसने ऐसे आर्टिकल के बारे में सोचा है कि उसकी सुर्खी ही है, उसने रखी है, उसने हेडलाइन ही ये रखी है, और वो भी रमज़ान में. तारीख में इसके मुनफरद, तारीख में इसके मुनफरद नाम क्या है? यानी समोसे को पहले समोसा शायद नहीं कहते थे. कराची में रमज़ान के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है महकमा मौसमियात के मुताबिक. ये रिपोर्ट है विच इज़ बैड न्यूज़, बिकॉज अगर हो जाती बारिश तो बहुत बेहतर हो जाता. बिकॉज बारिश कराची में हुए हुए मेरे ख्याल में कोई पिछले 6 माह में 2 मरतबा शायद बारिश हुई है. खुल के बारिश शायद 1 ही मरतबा हुई है. मतलब बारिश तो वैसे ही कराची में कम होती है, बट एनी हाउ. और क्या हो रहा है? क्या आपको मालूम है कि कुछ लोगों के बाल घुंघराले क्यों होते हैं? नहीं, इसकी सुर्खी होनी चाहिए थी कि आपको मालूम है कि आपके बाल घुंघराले क्यों हैं सलमीन? क्योंकि मेरी वालदा परसों बैठे बैठाए इतने अरसे बाद उन्होंने ये बात की. कहती है मैं सोचने लगी मैं जी अम्मी कि ये एवरीबडी नोज दिस इन माई फैमिली कि जब तक मैं मेरे ख्याल में कोई 12 साल की, हाँ 12 साल की थी, तब तक मेरे डेड स्ट्रेट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चित, बिल्कुल बाल बिल्कुल मेरे सीधे बाल थे. मतलब नॉट कैप टेढ़े हैं, बट आप समझ रहे होंगे बाल, डेड स्ट्रेट जिसको कहा जाता है. और बहुत सिल्की थे और घने थे और तकरीबन काले थे, मतलब डार्क ब्राउन थे बाल मेरे, बिल्कुल स्ट्रेट और इतने सिल्की कि अम्मी कोई क्लिप नहीं लगा सकते. अम्मी की मतलब अम्मी के अरमान ही रह जाते थे. वो खालाएं बाहर से आती थीं तो वो क्लिपें लेके आती थीं, तो अब्बू अगर किसी इंटरनेशनल टूर से आते थे तो वो कुछ ना कुछ, अम्मी खुद बाजार जाके, मैं वाज अ छोटा बच्चा ऑफ द हाउस, तो अम्मी को वैसे ही होता था इसकी हर चीज़ बड़ी मैचिंग हो. मेरे बाल पे सिर्फ हेयर बैंड टिकता था. हेयर बैंड पता नहीं आजकल की बच्चियाँ हेयर बैंड यूज़ करती हैं भी कि नहीं. एक अदद बैंड होता है जो कि सर के उसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, तो वो फिर भी टिक जाता. तो मेरी तस्वीरें भी ऐसी हैं, या तो खींच के वो जो डबल रोटी के ऊपर नहीं रबर बैंड होता, या तो वो सड़ा हुआ रबर बैंड जो है वो बाल में मेरे टिकता था उससे, तो वैसे ही इतनी चिड़ोती थी. सर के ऊपर फवारे वाली पोनी बना दे, अगर कोई 2 पोनियाँ मतलब या अम्मी बना देती थी वो खींच के बन जाती थी. बट मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स मेरी, छोटी छोटी चुटियाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं बनती थी. एनी हाउ एंड नाउ माई हेयर इज, आप जिस जिसने मेरी तस्वीर देखी, मेरे बाल घुंघराले हैं और बाकायदा घुंघराले हैं, नॉट इवन लाइक हल्के वेव्स हैं. तो मैंने कभी कोई, मैंने बाल बिल्कुल ज़रूर डाई शाई किए हैं ग्रेजुएशन के बाद, जाके मैंने बाल पहली मरतबा रंगे थे, लेकिन मेरे बाल 7th grade में, 7वीं जमात में मुझे जब टाइफॉइड हुआ था, और मुझे रेजिस्टेंट टाइफॉइड हुआ था. रेजिस्टेंट टाइफॉइड होता है जिसमें आपका जिस्म हर दवाई को ना कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है, और बॉडी बेहतर नहीं हो पा रही होती है. तो डॉक्टर्स ने बीच में जवाब जवाब भी दे दिया था कि ये पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, बहुत ज़्यादा बुखार की सिचुएशन, 106 से भी ऊपर बुखार चला गया था. एनी हाउ, तो वो वैसे ही मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. 21 दिन अस्पताल में गुजारना, 2 महीने रिकवरी पीरियड, स्कूल से 2.5 महीना ऑफ, और उसके बाद बालों का जो झड़ना के समझ ही ना आए कि वो गिरते गए गिरते गए गिरते गए गिरते गए. और उसको नॉट सोने पे सुहागा तो नहीं कहना चाहिए. अफसोस कि तो वैसे ही इमोशनली और फिजिकली इतना, इतनी सारी रिकवरी एक यंग बच्ची की 12-13 साल की उम्र में. और उसके बाद में कहीं बाल कटवाने के, अच्छा बाल गिर रहे हैं मेरे उस वक्त, आई थिंक हाँ कंधों से ऊपर के बाल थे, बट थे बहुत अच्छे बाल थे. तो मैंने कहा अच्छा छोटे स्टेप्स, उन दिनों में नया नया आया था लेयर्स और स्टेप्स. अब वो बड़ी जानी मानी हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो थी इस्लामाबाद की, ठीक है, और नया नया उन्होंने सलोन खोला था और किसी की रिकमेंडेशन से मैं गई थी. अच्छा, मेरी बड़ी पुरानी आदत, गंदी आदत थी जो कि अब बिल्कुल शुक्र है चेंज होगी, जिस पे लोग कहते हैं आप तो इंतज़ार ही नहीं करती हैं, मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठी रहती थी और पी लेती थी बहुत ही घटिया चीज़ों को भी. मैं घटिया इन द सेंस कि मेरे साथ और भी 1-2 दफ़ा इसी तरह के इंसिडेंसेस हुए, कुछ बिल्कुल ख़राब कर दिया और मैं चुप करके आंखों में आंसू टप टप और कुछ कहा नहीं. उन खातून को मैंने कुछ कहा नहीं, वो मेरे बाल काटती गई काटती गई काटती गई. शी गेव मी अ बॉय कट, अ गंदा वाला बॉय कट. मैं जब वो काफी ज्यादा उन्होंने काट लिए तो मैंने कहा तो बहुत छोटे हो गए. शी इज लाइक आप ही ने तो स्टेप्स कहा था. मैंने कहा स्टेप्स तो यूं सामने जो लेयर्स होते हैं सॉफ्ट लुक जो एक लड़कियों को बड़ा पसंद होता है. तो शी सेड नहीं नहीं आपने स्टेप्स कहा था. तो स्टेप्स तो ऐसे मैं दिल में सोचती कड़े स्टेप्स नहीं है जो कि बॉयकट होते हैं. खैर बाल जब फाइनली ग्रो आउट करने शुरू किए तो वेवी और मैं मानू ना कि ये मेरे मैं ये कैसे बाल हैं. बिकॉज एक तो आई वॉज यंग, दूसरे में एक ट्रोमैटिक, अंग्रेजी में इसको ट्रोमैटिक कहते हैं, यानी बड़ी दिल दुखने वाली सिचुएशन से गुजरी थी. बिकॉज आप एक छोटी उम्र में एक सीरियस बीमारी से गुजरो जिसमें आपने सुना हो डॉक्टर्स को कहते हुए कि पता नहीं इसकी हालत ठीक होगी भी कि नहीं होगी. आपके लिए जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर बड़ा इमोशनल होता है. ऊपर से बाल कटवाने जाओ और सब बाल खराब कर दे कोई, जब वैसे ही आपके बाल इतने झड़, बालों की हालत डिफरेंट, जिल्द की हालत डिफरेंट, सब खराब. खैर तो वो मेरे लिए कभी कोई फ़र्क किसी चीज़ का नहीं पड़ा था कि किसके बाल कैसे हैं, किसके बाल कैसे नहीं, किसकी रंगत, कभी नहीं फ़र्क पड़ा था. लेकिन वही बात खुद पे आया और ऐसी सिचुएशन के बाद आया तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या हो गया मेरे बालों को. जबकि मेरी वालदा के घुंघराले बाल और लंबे घुंघराले बाल तो और मुझे बहुत पसंद थे. मैं अम्मी को हमेशा कहती थी कि मुझे ऐसे बाल चाहिए, मेरे ऐसे क्यों, गोल गोल लॉक्स क्यों नहीं है. लेकिन जब वो गोल गोल लॉक्स की तरफ बाल जाना शुरू हुए तो समझ ही नहीं आई बात. कहानी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि क्या चीज़ कब किस वक्त इंसान की तब्दील हो जाए, ज़ाहरी तौर पर, अंदरून बैरून, किसी भी इंसान का इंसान के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं. जितना हम समझते हैं ना कि हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल है या ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल है, वो नहीं है. अम्मी जब उस दिन कह रही थी कि देखो तुम्हारा ना, सर आई लव माई कर्ली हेयर, शी इज़ लाइक या आई रियली लाइक योर कर्ली हेयर ऑल्सो. लेकिन कितना एक महीने के अंदर अंदर कितना चेंज आया, वो बीमारी की वजह से आया या शायद लिखा था कि होने थे. बिकॉज ना मेरे खैर वालिद साहब के बाल भी स्ट्रेट ही थे, लेकिन अब्बू की साइड ऑफ द फैमिली में, हाँ नहीं अबू के साइड ऑफ फैमिली घुंघराले ले नहीं, बट माय इतने स्ट्रेट बाल किसी के भी नहीं थे फैमिली में एज सच. इवन जो मेरी कजन्स जिनके बहुत बहुत अच्छे बाल हैं लंबे लंबे, ज़्यादातरों के इस तरह के नहीं थे जिस तरह के मेरे थे. शायद होने थे, शायद आई वॉज मेंट टू हैव दैट कर्ली हेयर. पॉइंट इज नॉट कर्ली हेयर, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड माई रेफरेंस. बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो हम समझते हैं हमारे पास कंट्रोल है, हमें सोचना चाहिए कि हम इसको बेबस के सेंस में मैं नहीं कहूँगी, आई थिंक आजिज़ी को इख्तियार करने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझाना. बेशक घुंघराले बालों की कहानी की रेफरेंस से सही या किसी और चीज़ से सही, कि हम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ सोचते हैं, चाहते हैं और करते हैं, लेकिन होता वही है जो होना होता है. तो क्या इसका मतलब है कि हम सोचना, ख्वाहिश करना या मेहनत करना छोड़ दें? कतई नहीं. लेकिन इसका ज़रूर ये मतलब है कि हम कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है इस लेवल तक, इस हद तक ना इंक्रीज़ करें जिसकी वजह से हम ये एक लम्हे के लिए भी भूल जाएं कि इख्तियार में हमारे कुछ भी नहीं है. So the story of the ghungrale, now you guys know, once upon a time I used to have dead straight hair and then there was the attack of the kya kehte hain usko, salmonella typhi, yeah that's what it's called. Naam dekhen kitna koi sona lag raha hai na, typhoid kar la, maaf kare, salmonella typhi sounds like some other language, koi European zuban ka jitna koi lafz. First time I heard it I was like hain, किसी बैक्टीरिया या वायरस या बीमारी का भी इस तरह का नाम हो सकता है. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. लाइटर नोट पर ऑब्वियसली बात कर रही हूँ, बट या लेट्स ट्राई टू ऐड शेयर व्हेयर एवर वी कैन. और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, क्या आपको मालूम है कि कुछ लोगों के बाल घुंघराले क्यों होते हैं? ये सुर्खी और हेडलाइन तो ये थी, लेकिन कहानी जो है वो कहाँ निकल गई. उसके अलावा हुकूमत का 4 मई से नादरा दफातर खोलने का ऐलान है. जब मैंने कल पढ़ा तो मैं थोड़ी सी खौफजदा हुई. अब ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को निज़ाम मामूल के मुताबिक तो नहीं, लेकिन निज़ाम चलाने के लिए कुछ चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने की तजवीज़ दी जा रही है या बाकायदा खोला जा रहा है. मैं थोड़ी सी इसलिए चौंकी थी बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है सिलसिला ये अगर नादरा जैसे दफातर का अगर और कुछ दफातर की बात हो रही है सिर्फ, तो ये नहीं कि सारे लोग जो हैं वो सारे नादरा के सेंटर्स के बाहर पहुंच जाएं कि जी हमारा कार्ड किधर है. लेकिन ये समझ लीजिए कि चूंकि हमारे वहमो गुमान में है ही नहीं, ना पाकिस्तान के ना बाकी दुनिया के, कि जब ये सारा सिलसिला कोरोना का ख़त्म होगा और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि महीनों दर महीनों गुजरने के बाद अंदाज़ा हमें होगा कि किन किन चीज़ों ने नुकसान पाया, किस लिहाज से नुकसान पाया. अल्लाह ताला खैरियत ही रखे, लेकिन ना सिर्फ मुआशी लिहाज से लेकिन सेहत के लिहाज से, बिजनेसेस के लिहाज से, सीवरेज के लिहाज से, स्मॉल बिजनेसेस हों, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन किस तरह दोबारा बच्चों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, दोबारा सनतों को कुछ चीज़ों को रीवैल्यूएट करना होगा, जब उसी तरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का और ट्रैवल का सिलसिला शुरू होगा, तो बैकलॉग जिसको कहते हैं ना, उसको कवर करने में कितना वक्त लगेगा. लोगों का उतावलापन मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा बढ़ के आएगा कुछ लोगों का. कुछ लोग शायद साबिर ज़्यादा हो जाएं इस वक्त से गुजरने के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों के हालात अभी सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं मईशती कॉन्टेक्स्ट से ख़ास तौर पे, जिनको नहीं समझ आ रहा कि कल तक या परसों तक जो है वो अगर कोई राशन दे भी गया है तो उसके बाद कैसे गुजारा होगा, और अगर दुकान दो हफ्ते और बंद रही तो अगले दो महीने तक तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा एक्सेट्रा. तो ऐसे लोगों का आई थिंक उतावलापन शायद, और ये गलत सेंस में मैं मुतावलापन नहीं कह रही हूँ, मगर उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू कवर अप फॉर थिंग्स. वो किस मरहले से गुजर रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. खैर, तो इसका मैं लिंक कैसे नादरा से बना रही हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें जो कि आपका शनाख्ती कार्ड जो होता है उसके बगैर आपका कोई सिस्टम नहीं चलता है, और जब इंशाल्लाह चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो सिस्टम्स इन प्लेस होना बड़े ज़रूरी है, निज़ाम का इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है. तो जिस निज़ाम की बिना पे काम चलता है उस निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ लेके आना, मेरे ख्याल में नीयत शायद गवर्नमेंट की ये है. आई एम श्योर एहतियाती तदाबीर ली जाएंगी, लेकिन एज आई सेड अगेन, सारे के सारे नहीं खोले जा रहे हैं. जो खबर है वो ये है कि हुकूमत ने 4 मई से नादरा दफातर खोलने का ऐलान कर दिया है. नादरा दफातर खोलने का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है, और दफातर खोलने का ऐलान उन्होंने किया तो मुआवन खसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि उनकी, अच्छा, नादरा दफातर खोलने की अपील की थी उन्होंने. अच्छा, सो दफातर बंद होने से कोरोना रिलीफ ऑपरेशन मुतासर हो रहा था, बिकॉज जो लोगों को पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और राशन प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के जो फंड से, चूँकि वेरिफिकेशन होनी होती है, यानी बहुत सारे मराहिल तो नहीं, मैं हम स्टेप्स को मराहिल ही हम कहेंगे, से लोगों को नहीं गुजरना पड़ता है, लेकिन वो चेक करना पड़ता है उनको बहुत सारे सिस्टम्स के ज़रिए कि वाकई में जो है वो जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको मिल रहा है, कोई खुदा ना खास्ता कोई जाली काम तो नहीं हो रहा है, कोई ये तो नहीं कि एक ही घर से अगर कोई बार बार कोई दोबारा कोई गलत तरीके से कोई डायरेक्ट तो नहीं हो रहे हैं फंड्स एंड डोनेशंस एटसेट्रा. तो उस एज आई सेड के ये सिस्टम इन प्लेस, फंडिंग जाएगी, डोनेशंस जाएंगी, लोगों का घर चलेगा, एक निज़ाम बनेगा, तो फिर आगे का निज़ाम भी बेहतर होने के चांसेस हैं. तो दिस वाज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. अच्छा, कमर्शियल ब्रेक भी आगे, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करती हूँ, इस वाली खबर को ख़त्म करती हूँ. सुबह 10 बजे से पहर 4 बजे तक इसके औकात होंगे, और ये कह रहे हैं कि कराची समेत सिंध भर के नादर दफातर और 3 मेगा सेंटर भी पीर से 1 शिफ्ट के लिए फाल होंगे. सो इसके मुताबिक मुझे तो लग रहा था सारे नहीं, तो 3 मेगा सेंटर्स अगर कह रहे हैं तो इसको मतलब 3 ही मेगा सेंटर्स होंगे, और बाकी दफातर भी अगर खोले जा रहे हैं. अब कितने लोगों को इजाज़त होगी, लोगों को अंदर आने की इजाज़त होगी नहीं होगी, क्या टाइम डिवाइड किया जाएगा, ये सब ऑब्वियसली आज पहला दिन है. इसके बाद जैसे जैसे हमें खबरें मिलेंगी हम आपको भी बाखबर करते जाएंगे. कमिंग अप ऑन द आवर इज द न्यूज अपडेट एंड अ कमर्शियल ब्रेक. मेरी आपकी मुलाकात अब 10 बजे के बाद, सो स्टे ट्यून्ड. वी विल कीप द एंटरटेनमेंट जारी, लेकिन थोड़ी देर बाद. That is right. Wake up. Good morning. दूसरे घंटे की शुरुआत. Second hour kicking off. आप सुन रहे हैं समाराइज और मैं हूँ सलमीन अंसारी. And yes, I am back. कुछ दिनों के वक्फे के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी था. और मैंने शो के शुरू में भी कहा था कि मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख के, सुन के, पढ़ के आपके जो कमेंट्स आए थे. मैंने थोड़ी सी ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि लोगों को एहसास था इस बात का कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं एहतियात नहीं कर पा रही या जिस माहौल से मैं गुजर के आ रही हूँ या यू नो इट गेट वट नॉट, मैं अपने दफ्तर की बात नहीं कर रही, नहीं एहतियात उतनी शायद हो पाएगी. और यू नो इतनी सीरियस एक वबा है जिसकी इंसान के कंट्रोल में है ही नहीं कि किसको हो और किसको ना हो. तो सबकी तजवीज़ और भरपूर सपोर्ट, मतलब तजावीज़ लोगों की यही थी कि हाँ बेहतर है कि आप घर बैठे हैं, और फिर लोगों की सपोर्ट की, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे खुशी इस बात की सिर्फ नहीं हुई कि लोगों को एहसास है मेरा, बट एहसास है कि ये दिस इज़ द बेटर वे. अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर घर से कीजिए. लेकिन एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, पहले भी जब मैं कर रही थी लॉकडाउन के बाद कुछ दिन की, मतलब शुरू में कुछ दिन की ब्रेक दी थी और फिर मैंने किया था शो कुछ हफ्ते, एंड देन उसके बाद फिर ब्रेक दिया, नाउ आई एम बैक अगेन. तो ये जब तक जिस तरह सिलसिला चलता रहेगा, वन डे एट अ टाइम इसको कहते हैं. एक वैसे भी आई थिंक ये सबसे बड़ी लर्निंग है इंसान के लिए ज़िंदगी में, कि इंसान को वैसे भी एक वक्त में एक ही दिन को संभालने का इरादा करना चाहिए. हम आगे फ्यूचर के बड़े प्लान्स बनाते हैं, जो कि बनाने भी चाहिए. मतलब ज़िंदगी इसलिए तो नहीं देगी कि इंसान प्लान्स ही ना बनाए. कुछ लोग ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन कदर और संभालने की जिम्मेदारी एक दिन की ही इंसान को होनी चाहिए. आज का दिन गुजर जाए और अच्छे तरीके से गुजर जाए और खैरियत से गुजर जाए. कल के लिए इरादा तो ये है, लेकिन कल का कल पे देखा जाएगा. मुझे ये लगता है कि इस क्वारंटीन से ये एक बड़ी अच्छी लर्निंग है जो कि हम सभी ले सकते हैं. कि आप क्या, हम क्या प्लान करके बैठे थे 2020 के लिए? कितने सारे लोग हैं जो कितना कुछ प्लान करके बैठे थे. जनवरी को कंपेयर कीजिए अभी मई के साथ. किसने प्लान किया हुआ था कि गर्मियों में कोई ख़ास चीज़ करनी है, या कहीं घूमने जाना है, या कोई नई नौकरी शुरू करनी है, या डिग्री शुरू करनी है? या कितने लोग थे जिन्होंने इस साल के शुरू में ही अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, फ्रीलांस का काम शुरू किया था? या कितने, सॉरी आपको पता ही है कि थोड़ी सुबह सुबह रमज़ान में थोड़ा डिफरेंट होता है. एनी हाउ, द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये मेरी कोई नई आपके ऊपर कोई अनवेल करने वाली बात तो नहीं है, पर जस्ट अ रिमाइंडर कि हम लोगों ने साल की शुरुआत किस तरह की थी, और ये वक्त जिस तरह का जिससे हम गुजर रहे हैं, सरप्राइजिंगली कुछ लोगों के लिए इतना कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ चेंज हो गया है. सो कदर और जिम्मेदारी दोनों एक ही दिन की लीजिए. कोरोना एंड पोस्ट कोरोना ऑल्सो, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब भी कदर भी उसी दिन की कीजिए, और तैयारी भी उसी दिन की कीजिए, और ज़िम्मेदारी भी बस उसी दिन की लीजिए. और उस दिन में जो जो लम्हा जैसे जैसे आता जाए उसको, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एम्ब्रेस करना, उसको कबूल कीजिए, उसको समझिए, उसको परखिए. मुझे 4 घंटे बाद एक दावत पे या मीटिंग पे जाना है, उसकी टेंशन उस वक्त 4 घंटे पहले लेने से ना वो दावत बेहतर हो जाएगी, ना वो मीटिंग बेहतर हो जाएगी, ना आप बेहतर महसूस करेंगे. ये चीज़ें शायद हम, जो हमारी एक भगदड़ लगी हुई थी, एक उतावलापन था, एक रट थी, एक रेस थी जिसमें हम चल रहे थे, शायद ये वापस आ भी जाएगा. इंसान की फितरत, इंसान मतलब की फितरत होती है इस तरह होना. लेकिन कितना अच्छा मौका है कम अज़ कम, तो ये हम नहीं शिकायत कर सकते ज़िंदगी में. हमें मौका ही नहीं मिला दोबारा पीछे बैठ के सोच के रीएनालाइज करने का कि ये जो एक भगदड़ है इसको कम कैसे किया जाए. भाई अल्लाह ताला ने आपके सामने रख दिया, कैसे कम किया जाए? बेशक एक इतनी खौफनाक सिचुएशन की वजह से, लेकिन इस खौफनाक आजमाइश और मरहले के सामने होने के बावजूद कितनी बड़ी सीख इसमें से निकल रही है. नॉट सिर्फ कितने सारे लोग कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने वीलॉग्स बनाना शुरू किए हैं, वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, जूम सेशंस हो रहे हैं, मोटिवेशनल बातें हो रही हैं, उस तरह की मोटिवेशनल बातें जो कि खैर कुछ लोगों को शायद बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन उस तरह की बातें नहीं कि जिस तरह की वैसे हम रोज़ाना ताकीद की जाती है, या किस तरह मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मतलब पीपल आर नॉट मोटिवेटिंग पीपल फॉर द सेक ऑफ इट, बिकॉज वाकई में सब गुजर रहे हैं एक ही जैसी सिचुएशन से. कुछ की शायद बदतर है, कुछ की कम बदतर है, लेकिन अच्छी किसी के लिए नहीं है. लेकिन अच्छी चीज़ सिर्फ जो निकल जो रही है वो हर इंसान अपने तरीके से उसमें से कोई सीख निकालने की कोशिश करे. ये दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो इफ इट टुक अ वबा फॉर अस टू लर्न रियली शोज दैट वी नीडेड अ वेकअप कॉल. कि वबा की वजह से अगर हम जिंदगी की कदर ज़्यादा कर रहे हैं तो अगेन मैं उस बात पर आऊँगी जो मैंने पिछले घंटे में कही थी कि हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है. एक ही ज़ात है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, और हम कितना अपने आप को समझते हैं, कितना समझते हैं हम, और भूल जाते हैं. गुरूर ना भी करते हो, तकबर ना भी करते हो, अल्लाह माफ़ करे, शायद कॉन्शियसली ना करते हो लेकिन शायद सब कॉन्शियसली करते हैं. एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट टाइम टू पुट दैट तकबर इन द कब्र, टू पुट इट इन द डस्टबिन एंड फ्लश इट आउट. That was Ele Dil and usse pehle it was Billo. Achha. Apne aap ko bhi yaad dilana padta hai. Kahan pahunche the hum? Rehman Khilji says, super yawning, eyes malmaling, pulling on self. Ke ut ja zalim, aadha din nikal gaya. Khair, aadha din to nahi, aapne 40 minute pehle jab message kiya tha. Well, it's a good thing that shows that you're a disciplined person. Ke agar aapko 9 baje ke baad lag raha hai ki late ho gaya hai. Does show that you discipline. Kehte, so now up and partially attentive. Chalo chalo ninja banke office chalo is today's slogan. Good morning. Good morning. Ninja, main to aaj dikhne mein bhi mere khayal mein main ninja lag rahi hu. Salim Abbasi kehte hain, welcome back. Khayalat to purane hi hain, bas aabo hawa badal gayi hain. Take care. Saad Zubairi kehte hain, since been going to work since a while now, so no, it's like a routine now. Main Ramzan ke liye actually pooch rahi thi, because Ramzan shuru hue hai to khair mashallah se ab pehla ashra bhi aaj ikhtitam ko pahunch raha hai. But routine to matlab during this lockdown mostly I had also been coming, to wo normal tha, but Ramzan mein it's a little different. Ek aur jawab aaya tha. मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की कि मुझे क्या कहते हैं जमाइयाँ आ रही हैं. अमाद कहते हैं यही हालात हैं. मैंने ये भी सवाल पूछा था, जी तो क्या हालात हैं, यू योनिंग अवे लाइक आई एम. आई एक्चुअली हैवन स्लेप्ट एट ऑल लास्ट नाइट. आई थिंक इतनी एक्साइटमेंट थी वापस आने की. डजेंट मैटर, वही बात ना, उम्र पे या एज पे या कितने अरसे से आप कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता. अगर किसी चीज़ से मोहब्बत होती तो मोहब्बत होती है, तो खुशी होती तो खुशी होती. अब क्या करें, मोहब्बत है आप लोगों से है, रेडियो से है, और खुशी है तो खुशी है. दो दिन के गैप के बाद भी वापस आए इंसान तो लगता है ये इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, क्या बात हो रही. पीसीबी लॉकडाउन से मुतासर खिलाड़ियों की इमदाद का ऐलान कर चुका है. उन्होंने कहा है कि वो कोरोना के बायस लॉकडाउन से मुतासर होने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशल्स, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ की इमदाद करेंगे. किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, एक मिनट पढ़ रही हूँ मैं. उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को 25,000 रुपए, मैच ऑफिशियल्स को 15,000 दिए जाएंगे, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ 10,000 रुपए वसूल करेंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सिर्फ मुस्तहिक उम्मीदवारों की इमदाद को यकीनी बनाने के लिए कवायद और जवाबत तैयार किए गए हैं, और इन पर पूरा उतरने वाले तमाम अफराद को रकम ईद उल फितर से पहले अदा कर दी जाएगी. अब मैं दिमाग में सिर्फ सोच रही हूँ कितनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है पीसीबी. ये मैं इस पे कमेंट ना कर सकती हूँ ना करना चाहूंगी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, एंड बिकॉज मुझे 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है. लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैच ऑफिशल्स को 15,000, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में इनका क्या बनेगा. I'm just thinking. मतलब वैसे तो किसी का भी, it's something is better than nothing. ये एक सोच है कि अच्छा कुछ तो कम अज कम है. लेकिन अगर इनके पास 2 महीने से कोई काम नहीं है और अब 10,000 रुपये देंगे, जैसा गवर्नमेंट ने अगर 12,000 रुपये बांटे और फिर अब राशन का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया गया, तो NGOs खास तौर पे कर रहे हैं. मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं बात कर सकती कि कहाँ कहाँ राशन बांटा गया है, बट आई डू नो कि सूबाई लेवल पे लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, देन NGOs बहुत सारे काम कर रहे हैं. 12,000 रुपए पहले माह के अंदर अंदर उन्होंने तय कर दिया था कि ये देंगे. अब आई एम नॉट सेइंग कि काफी है नहीं काफी, बट टू स्टार्ट विथ इन्होंने कहा था कि दिया जाएगा. 2 महीने से जो लोग नौकरी के बगैर है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है. दो में ईद उल फितर का मतलब है कि लॉकडाउन स्टार्टेड 21 मार्च से. तो या तो ये कि उनको मार्च की भी अगर सैलरी पूरी मिल रही है और अप्रैल की भी मिल रही है और मई की भी पूरी मिलेगी और उसके अलावा 10,000 रुपए, अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है और 2 महीने के बाद आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये तो किसी के साथ भी ज्यादती है. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो जो ये जो इन्होंने इकदाम उठाया है वो गलत है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की जरूरत है ना, कि अगर 2 महीने से टका घर में नहीं गया और इनको तो नहीं किसी ने मुस्तहक समझ कर राशन दिया होगा. यूजुअली आइडेंटिफिकेशन किस तरह की होती है, मतलब अगर इनकी भर्ती हुए हुए हैं एक इदारे में, पीसीबी जैसे इदारे में अगर भर्ती हुए हुए हैं बेशक कॉन्ट्रैक्ट पे सही, तो आई डोंट नो कि ये क्वालिफाई करते हैं कि नहीं कि गवर्नमेंट से जाके किसी जो स्कीम्स हैं इनकी तहत, ये क्या क्वालिफाई करते हैं कि इनको इमदाद किसी तरह की एडिशनल मिले. या शायद अगर किसी इलाके में ऐसे इलाके में रहते हैं और जहाँ पे राशन बट रहा हो तो शायद पता नहीं है, मतलब सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो लेना भी नहीं चाहते, देना भी नहीं, मतलब देते तो हैं लेना नहीं चाहते. सो आई डोंट नो, आई मीन ठीक है टू स्टार्ट विद अच्छी बात है 25,000, 15,000 और 10,000, लेकिन फिर वही बात कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को 25,000 रुपये देंगे क्यों? उनके घर में अगर 4 अफराद हैं और जो ग्राउंड स्कोरर्स हैं उनके घर में 12 अफराद हैं, फिर क्या, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसको आई थिंक इनको रिविजिट करने की जरूरत है. इस वक्त तफरीक करने का वक्त नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को 25,000 रुपए दे रहे हैं और ग्राउंड स्कोरर्स को आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, जो कि चांसेस है कि ग्राउंड स्कोरर में शायद घर में उनके कोई एक ही फर्द हो कमाने वाला जिसको ये 2 महीने से शायद कुछ ना मिला और आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं. सो या इफ एनीबडी फ्रॉम पीसीबी इज लिसनिंग टू डू री इवेल्यूएट दिस, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात की है जो कि आपके पास इसके का कोई रिटॉर्ट है या आपके पास इसका कोई जवाब है एज ए लिसनर ऑल्सो या एज समबडी हु नोज मोर डिटेल्स अबाउट दिस, प्लीज जरूर बताइएगा. लिखिए SFM स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. ओ यू कैन ट्वीट अवे ऑन माई ट्विटर हैंडल सलमीन अंसारी, दैट्स विद एन SULMEEN और उसके आगे अंसारी. That was an interesting version of Dhani. That was Strings and Ustad. Hang on. H.B. Galo. If I'm pronouncing it correctly. I hope I said it correctly. I've heard it. I haven't heard it. This version. But it's been a few days later. Hang on. H.B. Ustad. H.B. Galo. I think is the way to pronounce it. तो इनका ये वर्जन था. दिस वाज कुक स्टूडियो का कौन सा सीजन था ये? दिस इज आई थिंक लास्ट से लास्ट टाइम वाला. इस दफा खैर बड़ी एक्साइटमेंट थी, आई थिंक रोहेल हयात वाज बैक इन द प्रोडक्शन सीट, बट इस दफा जिस तरह बाकी सारा निज़ाम जो है वो रुका हुआ है, आई वंडर दो कि किसी तरह, बिकॉज बहुत से टेलीविजन की बहुत सारी आप चीज़ें देख रहे हैं, एहतियाती तदाबीर अपनी तरफ से वो अख्तियार करके थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके शोज तो हो रहे हैं, रमज़ान नसेरी की ट्रांसमिशन्स भी हो रही हैं, करंट अफेयर्स के शोज़ भी हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट शोज़ भी हो रहे हैं. उसमें सिर्फ ये कि जो ऑडियंस थी उनकी तादाद बहुत या तो कम कर दी गई है या ख़त्म कर दी गई है, मतलब 5-6 लोग सिर्फ बिठाए हुए हैं या किसी को भी नहीं बिठाया हुआ. होगा कह रही साथ हसन कहते हैं लैपटॉप खोला है काम के लिए एंड फिगर आउट कर रहा हूँ ईमेल्स एक आंख से. ऐसा ही होता है रमज़ान में, आई थिंक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता, वैसे भी रमज़ान में चैलेंजिंग होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, बट आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले फिर भी सो जाते थे थोड़ी बहुत नींद सहरी से पहले पूरे का, कुछ लोग जो हैं वो सहरी तक पहले भी जागते थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और इवन दो सुबह उठना तो होता है लेकिन घर से जो लोग काम कर रहे हैं वो सुबह 9 बजे से उमूमन कर नहीं रहे, अनलेस वो खुद उन्होंने इस तरह का रूटीन इख्तियार किया हो अपने आप को एक रूटीन में लाने के लिए. वर्क फ्रॉम होम यानी घर से जो लोग मीटिंग्स कर रहे हैं वो 10-11 बजे उमूमन, शायद उससे भी देर से जो है वो कर रहे हैं. और फिर हाँ दिन में मीटिंग्स काफ़ी सारी होती है, रमज़ान में आई थिंक शायद थोड़ा सा कम हो गया होगा. सो बिकॉज पता है कि 9 बजे उठ के नहीं बैठ जाना है, सिवाय उन लोगों के जैसा मैं 9 बजे आ गई हूँ या जो लोग दफ्तर जा रहे हैं अब पहले भी जा रहे थे या दोबारा उन्होंने जाना शुरू किया रिसेंटली, उनको 9:30 तक का टाइम होता है. तो इन लोगों को हटाते हुए जो वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा टफ होता है लेकिन अगेन एज ऐसे टाइम जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी, सो उस वजह से मुझे लग रहा है कि लोग अफ्तारी के बाद सहरी तक जागते हैं, नॉट इबादत के लिए. वो खैर कोई जजमेंट उसमें नहीं, बहुत सारे लोग इबादत के लिए भी जागते हैं, बट अब इसलिए कि कौन अब सोए और कौन अब उठे तो एक ही दफ़ा करके सो जाते हैं. और फिर ये भी होता है कि सुबह सुबह नहीं उठना है 7 बजे 8 बजे काम के लिए. सो या मैं तो खैर मैं तो नींद का मुझे लगता है पिछले 6 महीने से कोई एक आध दिन के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है जब मुझे मिली हो कोई 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं. तो कल तो रात थी ही नहीं बिल्कुल. तो ये इंजॉय कीजिए आप इन जमाइयों को, माजरत मैं 2-3 दफ़ा कर चुकी हूँ, अब क्या करें. लेकिन अब इंसान अगर 24 घंटे का उठा हुआ और रोज़ा भी हो तो ऐसा ही होता है. कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज शेयरिंग, एक तो मैंने PCB से रिलेटेड आपसे न्यूज़ शेयर कर दी थी, ब्लैक ट्विटर बिकॉज ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर विद दिस पर्सनैलिटी. क्या मतलब इस बात का, ये क्यों ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर. A doctor in Karachi has lost his life due to COVID-19. His family was not able to get an ICU. By the time they got one, he had passed away as per media reports. Definitely a shame on the government's infrastructure. Health is a provincial subject under the 18th Amendment. 18th tarmeem pe bahut bahut guftugu aur not relevant guftugu, irrelevant guftugu. Bahut sare relevant cheezon pe irrelevant guftugu hone lagti hai. बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है पिछले एक हफ्ते से. बट ये बहुत अफसोस की खबर है कि डॉक्टर एक थे कराची में और उनको कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हुआ क्योंकि ICU की जो है अरेंजमेंट नहीं कर सके. अब मैं इस पर सिर्फ इतना कमेंट करूँगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ठीक है इख्तलाफात अपनी तरफ, ICU जो इंटेंसिव केयर यूनिट की फैसिलिटीज़ हैं या वेंटिलेटर्स की तादाद है अब तो खैर बहुत इम्प्रूव की है उन्होंने पिछले 1-1.5 माह में, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स को कहते हैं किए हैं, लेकिन अगर लोग ज़्यादा हैं और ICU मौजूद नहीं है तो यही तो बात कह रहे हैं बहुत सारे लोग दुनिया में, यही तो डॉक्टर्स सर पीट रहे हैं कि किसको ज़िंदा रहने की मतलब हम डिसीशन लें और किसको ज़िंदा रखना है किसको ज़िंदा नहीं रखना, हम कैसे ये डिसीशन ले सकते हैं. तादाद लोगों की जहाँ पर जिन ममालिक में ख़ासतौर पर ज़्यादा तादाद, बहुत ज़्यादा तादाद है, पाकिस्तान में भी अब बनिस्बत पिछले 2 हफ्तों के बहुत तादाद 20,000 से ज़ायद लोग जो है वो बढ़ चुके हैं. कहाँ हमने शुरुआत की थी 12-15-20 एक से एक्चुअली शुरुआत की थी और कहाँ 20,000 से ज़ायद लोग. लेकिन पॉइंट इज़ दैट अभी भी फैसिलिटीज़ बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है. यूरोपियन ममालिक इतने डेवलप्ड ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये लोग फेस कर रहे हैं. उन्होंने खैर अरेंजमेंट काफ़ी सारी मेकशिफ्ट अब कर दी है बेहतर, लेकिन वहाँ पे भी लोगों को अक्सर फेस करना पड़ता है कि किसको वेंटिलेटर पर करके किसको नहीं. अमेरिका में तो और भी ज़्यादा सिचुएशन. मैं तफसील नहीं आपको बयान करूँगी लेकिन हमारे एक बहुत ही करीबी जानने वाले जिनकी फाइनेंशियल हालत जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस कि कोई ख़ास अच्छी नहीं है इस तरह सोच सकते हैं, और हम उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं तो हमारी फैमिली के ज़रिए से उनके समझे उनका घर जो है वो काफ़ी हद तक चलता है. उनको शक हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको वहाँ के डॉक्टर्स ने उनके सिम्टम्स देख के पूछ के और वापस भेज दिया कि आपका टेस्ट नहीं होगा, आपके सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं हैं. और उन्होंने भेजा इसलिए बिकॉज वहाँ टेस्टिंग किट्स ही इतने पूरे नहीं. मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ. हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया जब उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई तो अब जाके उनका टेस्ट हुआ और पॉजिटिव निकला. यानी कि उनको था, लेकिन चूंकि अब ये जब चीज़ साबित हो चुकी है कि देखने को जो खदशात जो नज़र आ रहे होते हैं या जो सिम्टम्स नज़र आते हो रहे होते हैं वो हर एक के बराबर के नहीं हैं, और हर हफ्ते बाद हमें नई चीज़ें पता चल रही हैं. अमेरिका के कुछ यंगस्टर्स का पता चला था कि किसी एक आध शहर में काफ़ी तादाद में कि जिस तरह चिलब्लेन्स नहीं होती सर्दियों में हमें पाँव पे फोड़े से बन जाते, लगते वो फोड़े लेकिन फोड़े नहीं, नील नील सा पड़ जाता है आपकी उंगलियों के इर्द गिर्द. कोरोना के बहुत सारे यंग पेशेंट्स में जो है वो ये चीज नुमाया हुई थी. तो हर हफ्ते जब नई चीज पता चल रही है तो ये आई एम सॉरी टू से बट ये किस तरह गधों वाला सिस्टम है ये, कि आप ये कह के आपके सिम्टम्स इतने तेज नहीं है, आप घर जाके अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए. जाहिर सी बात एक मजबूरी है, वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, लेकिन ये मत कीजिए कि कहिए कि आपके सिम्टम्स सिवियर नहीं है, आप सेल्फ क्वारंटीन कर लें. साफ साफ कह दीजिए हमारे पास किट मौजूद नहीं है. सिम्टम क्या, कौन सा सिवियर है कौन सा नहीं सिवियर है, जब ये इतने सारे सामने केसेस आ चुके हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर कुछ लोगों की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिम्टम जो है वो इसके लिए टेस्टिंग किट नहीं है तो मत टेस्ट कीजिए. लेकिन उसको घर भेज के फिर कौन जिम्मेदारी उठाएगा इस बात की कि खुदा ना खास्ता उनकी इतनी तबीयत खराब हो जाए कि वो फिर क्रिटिकल पेशेंट बन जाए. और ऐसे भी केसेस सामने आए हैं. सो मैं खैर लिंक इसलिए कर रही हूँ कि अपने मेरे एक जानने वाले, मतलब किसी बहुत ही करीबी खानदान के हमारा हिस्सा है, उनके ये जानने वाले हैं, उनका टेस्ट एक हफ्ता खुद उनको अंदाजा हो गया था 2 दिन की उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो दूसरे दिन ही चले गए थे लेकिन उनको वापस भेज दिया गया था, और उसके एक हफ्ते बाद उनका टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव आया, जिसका मतलब है कि अब वो 14 दिन जो है वो कम अज कम क्वारंटीन में रहेंगे. पता नहीं वो घर पे ही अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अस्पताल में है. अल्लाह खैरियत खैर खैरियत से उनको रखे और उनके लिए आसानी पैदा करे. बट ये हालात हैं. अब अमरीका में है तो फिर हम कराची में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में क्या किसी को कुछ कह सकते हैं. ऑल राइट, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कल. होपफुली जमाइयों का सिलसिला थोड़ा सा कम होगा बिकॉज रूटीन वापस एक आ चुकी होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. क्या मैं किस मुंह से अभी आपको दोबारा दोहराऊं, लेकिन चूंकि ज़रूरी है याद दहानी कराना, आई थिंक इस चीज़ के बारे में याद दहानी इंसान जितनी कराए उतनी कम है. एंड दैट इज़ कि ज़रूरत के तहत, ये जो जुमला है ना ज़रूरत के तहत, इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आराम के लिए, अपनी आसाइश के लिए इसको तोड़ मड़ोड़ करके जी ये मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैं बाहर निकला या निकली मत कीजिए. सैर सपाटे करने वाली कोई जगहें कोई मकामात तो खुले हुए हैं नहीं. सौदा इंसान कितना कोई लेगा. दिहाड़ी अगर नहीं लग रही है तो दिहाड़ी, मतलब मैं क्या किसी की मजबूरी को समझूंगी, लेकिन अगर दिहाड़ी लग नहीं रही है और उसके बावजूद आप बाज़ारों में जाके इस घबराहट में कि अच्छा घर पे आपको अपना सिलसिला कोई चलाना है, ऐसे बाजार में चले जाएंगे जहाँ पे खुदा न खास्ता किसी को हुआ हुआ होगा, बेवकूफ़ियाँ जो पकौड़ों समोसों के मैं स्टॉल्स वगैरह देख रही हूँ कुछ शहरों में खुले हुए हैं. बेशक वजह और मकसद सबका एक ही है कि अपना घर सबको चलाना होता है, लेकिन या तो आप इस बात की गारंटी ले लीजिए कि आपको चूंकि अपना घर चलाना है तो आप ये गारंटी देते हैं कि आप और आपसे जो भी खरीदने आ रहा है उसको किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा आपकी वजह से या आपकी मजबूरी की वजह से. ये बात बहुत तल्ख है लेकिन मतलब दरख्वास्त ही मैं सिर्फ कर सकती हूँ कि आप अपने किसी काम से जा रहे हों या आप किसी मजबूरी से बाहर निकल रहे हों, जहाँ 2 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं वहाँ अगर आप कम से कम 3 से 6 फिट बाहर के ममालिक में तो उन्होंने 2 मीटर्स का फासला आप कह दिया है, 3 से 6 फिट का फासला अगर आप नहीं रख रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं पहन रहे हैं, हर घंटे बाद हाथ नहीं धो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि बेशक आप 100 लोगों से नहीं मिले हैं, 4 लोगों से मिलने की वजह से ही इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को नाख्तियार करते हुए आपको कोरोना खुदा ना करे बट होने के खदशात बढ़ सकते हैं. तो आपकी जो भी मजबूरी है वो आप बेहतर जानते हैं. हम कौन है कॉमेंट करने वाले, बिकॉज हर एक को अपना और अपने घर वालों का पेट पालना होता है. लेकिन इस नीयत से अगर आप वाकई बाहर निकल रहे हैं कि कोई काम लग जाए कोई स्टॉल लग जाए तो प्लीज़ ये देख लीजिए कि जहाँ आप निकलेंगे एक स्टॉल लगाएंगे वहाँ 10 लोग आएंगे, वहाँ 20 लोग आएंगे, वहाँ खदशात बढ़ेंगे. सो फैसला और एहतियात दोनों आपके हाथ में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह मेरी आपकी ज़रूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज़ मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा.